नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन्मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 26 श्लोक नंबर 17 रामाउचहु नरनाथ न जाने स्तोत प्रिया जात व्यवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां अस्य शत्रुहान रामाउचुः नरनाथना जानीम स्तोत्प्रिया जत व्यवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहान रामः उचुः नरनाथ न जानीम स्तोत्प्रिया जत व्यवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शत्रुहान रामः उचुः नरनाथ न जानीम स्तत्प्रिया जत व्यवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानं पश्य शत्रुः शब्दानुवाद रामाउचुः स्त्रियों ने कहा नरनाथ हे राजा न जाने महा हम नहीं जानते तोत्प्रिया तुम्हारे प्रिया ने चद व्यवस्यति क्यों इस प्रकार का जीवन धारण कर रखा है भूतले पृथ्वी पर निरवस्तारे बिना बिस्तर के शयानाम लेट हुई पश्य देखो शत्रुहन हे शत्रुओं का वध करने वाले अनुवाद और तात्पर्य अभयचरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की मेरा आवाज कम होना चाहिए आपका आवाज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए प्रभुपाद के लिए श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद का जय ध्वनि देने के लिए हमें क्यों संकोच है जो प्रभुपाद हमारे के लिए सब कुछ किया है इतना जयगान करना चाहिए कि सारा कागज पत्र भी फेल मार जाएगा तब अनुवाद इस प्रकार है सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया हे प्रजा के स्वामी हम यह नहीं जानते कि आपकी प्रिया ने क्यों ऐसी स्थिति बना रखी है हे शत्रुओं के संहारक कृपया देखे, वे बिना बिस्तर से जमीन पर लेटी हुई है, हम नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों कर रही है। तात्पर्य, जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो वह अनेक पाप कर्म करता है। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की, स्वयं पशु के वध में लग गया। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकवादी मनुष्य की है, वे अपनी विवाहित धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते, ये पत्नी को अपने इंद्रिय तृप्ति का साधन मानते हैं, भक्ति का नहीं है। निर्बाध विषयी जीवन बिताने के लिए कर्मी कठोर श्रम करते हैं, उनका दृढ़ विश्वास है कि किसी भी स्त्री के साथ संभव करके उसे धन देकर चुकाता कर दो, मानो वह कोई व्यापार की वस्तु हो। इस प्रकार वे ऐसी भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम करते हैं, ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि को खो चुके होते हैं, उन्हें अपने अंतकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की शास्त्र के नियम के अनुसार विवाहित धर्मपत्नी नहीं होती, वह सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी, क्योंकि पति द्वारा उनकी उपेक्षा हुई थी। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के वक्षस्थल पर विद्यमान है। दूसरे शब्द में पत्नी को अपने पति की प्यारी और सुरक्षित होना चाहिए। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा अपने निजी देखरेख में की जाना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। पति तथा पत्नी का यही वास्तविक संबंध है, इसीलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। कोई एक ही गांव एक कोई एक ही पांव एक हाथ या शरीर के किसी अंग से काम नहीं चला सकता है। इसी प्रकार पति तथा पत्नी को प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार एक साथ रहना चाहिए। निम्न जोनियों में विशेष रूप से पक्षियों तथा पशुओं में नर तथा मादा साथ साथ रहते हैं, यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार मानव जीवन में पति तथा पत्नी एक साथ रहना आदर्श जीवन कहलाता है। घर को भक्ति का स्थान होना चाहिए, पति पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए और अनुष्ठान द्वारा स्वीकार की गई होना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य घर में सुखी रह सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्रीगुरुशीतपदकमलम श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतम सहगण रघुनाथानीतं तं सजीवं साद्वैतम सवधूतं परिजनसहितम कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदन सहगण ललिता श्रीविशाखानीतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में श्री श्री कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी जो चर्चा का विषय चल रहा है, बहुत ज्यादा से ज्यादा माताओं लोग का ऊपर आ रहा है। दुख नहीं होना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त का साधक का हिसाब से लेना चाहिए। भागवत में बहुत प्रकार के प्रमाण दिया गया है, लेकिन भक्त बनने का नाते इसको मन का अंदर नहीं लेने का। ये जितना सब कुछ कहा गया है, किस प्रकार हमें सुधारना है। व्यक्ति चाहता है घर को मंदिर बनाने के लिए, और शास्त्र भी कहा है, घर है कि मंदिर है, कब मंदिर होगा? घर में सिर्फ विग्रह प्रतिष्ठा करना और तस्वीर रखना मंदिर बन जाएगा? वो नहीं। घर घर नहीं रहेगा, घर के मंदिर हो जाएगा जब पति पत्नी सौधर्मणी पत्नी पति का सेवा ठीक ठाक करेगा, नहीं तो वही घर एक ही भूत बंगला का रूप में बन जाएगा, नहीं तो श्मशान घाट तरफ बन जाएगा। जब वो घर का अंदर सौधर्मणी पत्नी पति का सही से सेवा, कितने प्रकार की कहा गया, और अतिथि का सत्कार, मृदु भाषी मीठा सा बोलना, अभी का समय का नहीं, समय था ऐसा लेकिन अभी समय परिवर्तन होने का नाते नहीं, अभी भी है, अभी भी ऐसा संस्कार है, ऐसा स्थिति है, बहुत हो सकता है करोड़ों में एक ही घर क्यों नहीं हो, ऐसा स्थिति अभी भी है। समय परिवर्तन होने का नाते हर चीज परिवर्तन है क्या? कहते हैं हर चीज तो आधुनिक ही चल रहा है, भक्ति भी आधुनिक है क्या? भक्ति आधुनिक नहीं है, ये नेचुरल है। बहुत सारे समझते लोग बोले भक्ति भी आधुनिक में करना चाहिए, इसलिए हम लोग का अभी डिसाइपल कोर्स हुआ था, एक प्रभु जी देखा रहे थे आधुनिक में कैसा माला जपते हैं, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में माला, बस चल रहा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आधुनिक स्टाइल जप हो रहा है, तभी टकिंग जब जब कर रहा है, बीच बीच में बात कर रहा है, और गाड़ी चला रहा है एक हाथ में और एक हाथ में माला, और चलते चलते बहुत सारा प्रकार के देखा है, ये अभी इसी प्रकार के जब देखा रहा है, ये आधुनिक स्टाइल कह रहे हैं, लेकिन भक्ति आधुनिक नहीं है ये समझना चाहिए। और घर घर नहीं रहेगा, मंदिर बन जाएगा जब घर का अंदर तुलसी पौधा रहेगा, अतिथि का सेवा रहेगा, भगवान का तस्वीर होगा कि भगवान का विग्रह होगा, और उसी घर पे गंगा जल नहीं तो कोई भी तीर्थ का जल रहेगा, और उसी घर पे एक ही गाय का पालन पोषण होता होगा, तब वो घर घर नहीं है, वो घर क्या है? मंदिर है। प्रमाण कितने प्रकार दिया गया, कहते हैं चार जगह छोड़ के भगवान दूर नहीं जाते हैं, भगवान इसी जगह पे है, भगवान हर जगह पे है, और भगवान घर पे भी है, मंदिर पे भी है, सब जगह पे है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान सब जगह पे है फिर हमें मंदिर क्यों जाते हैं, उसका कहने का अर्थ है, इसका तात्पर्य कहा जाता है भगवान हर जगह पे है लेकिन भगवान एक ही जगह पे पूजा पाते हैं जो कि मंदिर, लेकिन जो बकवास करता है जो कुछ नहीं करता है हर जगह पे, तो हर जगह पे पूजा कर सकता है क्या? हर जगह पे पूजा नहीं कर सकता है, इसलिए बोलता है भगवान तो हर जगह पे है मंदिर में, लेकिन भगवान एक ही स्थान पर दर्शन देते हैं, इसलिए मंदिर बना के मंदिर में पूजा किया जाता है। इसलिए घर एक मंदिर है लेकिन घर का अंदर ये सब व्यवस्था होना चाहिए, और ये जिस घर पे नहीं है वो घर घर नहीं है, भूत बंगला एग्जाम्पल देते हैं ये, और जहां पे ये चारों चीज है वहां पे भगवान विराजमान, जहां पे शास्त्र है गीता और भागवत, इसको कहते हैं शब्द ब्रह्म, भगवान वहां पे विराजमान है, शब्द ब्रह्म रूप में भगवान विराजमान है, और जहां पे नाम कीर्तन चलता है, जहां पे नाम कीर्तन चलता है भगवान वहां से छोड़कर कहां नहीं जाते हैं, कहते हैं ना नहाम तिष्ठामी वैकुंठ जोगिनाम हृदय जत्र गायते मद्भक्ता तत्र तिष्ठामी नारद, वहां पे भगवान विराजमान करते हैं। और जहां पे साधु संत लोग आते हैं, और जहां पे गो माता रहते हैं, ये चार जगह छोड़कर भगवान दूर नहीं जाते हैं, इसलिए कहते हैं घर है कि मंदिर है, मंदिर के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए, और निष्ठापूर्वक सौधर्मणी पत्नी पति का सेवा करें। बारंबार कहा जाता है पति को पति देवता रूप में मानना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं बोलते हैं हम आदर्श गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, आदर्श गृहस्थ जीवन का अर्थ क्या है? कौन बता सकता है? इतना दिन से आप लोग सुन रहे, आदर्श गृहस्थ जीवन का अर्थ क्या है, कोई बता सकता है? आदर्श, आदर्श का अर्थ क्या होता है और किससे आदर्श बनेगा? आज एक एग्जाम्पल देते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। स्वागत कैसा करना है? लाठी लेके? बहुत सारे लोग तो अभी ऐसा संसार में हो चुका है, आधुनिक स्टाइल में स्वागत कर रहे हैं, घर का सामने बोर्ड लिख कर रखा है कुत्ते प्रति सावधान, वहां पे क्या जाएंगे? वह देखते हुए बाहर निकल जाएगा, देखते हुए बाहर निकल जाएगा, कहां जाएगा? घर का अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, घर पे लिखा है, घर का सामने दरवाजे पे लिखा है। पहले ज्यादा से ज्यादा पहले समय पे घर का सामने लिखा होता था एक श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिथानम धर्मस्य तदात्मन सृजमेहम, ये श्लोक लिखा होता था, संस्कार ऐसा था। अभी का समय में नहीं है, अभी का खुद का नाम नहीं तो कुत्ता का नाम लिखे ये बोर्ड है। अभी प्रभु जी बता रहे हो सकता है बहुत सारे का, लेकिन नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग का घर पे ये हो रहा है। कैसे आदर्श बनोगे? एक एग्जाम्पल देते हैं, हमें आदर्श को मतलब आदर्श का दूसरा अर्थ कहते हैं श्रेष्ठ, आदर्श मतलब श्रेष्ठ, इसको कैसा कहते हैं? कहते हैं एक आदमी शोधनों से श्रेष्ठ नहीं बनता है, साधनों से श्रेष्ठ बनता है। और भवनों से श्रेष्ठ नहीं बनता है, आदमी भवनों से श्रेष्ठ नहीं बनता है, भावना से श्रेष्ठ बनता है। भावना, इसलिए संस्था का नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृदु संघ। भावना परिवर्तन, भुवन बहुत बड़ा बनाया, बंगला बहुत बड़ा बनाया, लेकिन भावना परिवर्तन नहीं है, आदर्श माना जाएगा? बहुत बड़ा बंगला बनाकर बैठा है, बहुत बड़ा घर है जहां पे कम से कम 20 नौकर है, लेकिन खुद का भावना परिवर्तन नहीं है तो वो क्या है? बहुत बड़ा भुवन बनाने से कोई आदर्श नहीं बन जाता है, भावना से। और कोई उच्चारण से आदर्श नहीं बनता है, खुद का आचरण से। इसलिए कहा गया आचरण, और ज्यादा से ज्यादा आचरण करके शिक्षा देने का, उच्चारण से नहीं। यह है आदर्श, आदर्श गृहस्थ जीवन मतलब यही है, आचरण से। और आपका आचरण को देख के, जिसी प्रकार पिता माता का आचरण, पिता माता का आचरण को देख के बच्चा आचरण करता है, बच्चा का आचरण पिता माता का आचरण से होता है, और शिष्य का आचरण गुरु का आचरण से। चलिए हम ये जानना चाहिए कम से कम पतिव्रता नारी को क्या कर्तव्य है। तब पहले हमको थोड़ा बैक में जाना है, पहले जानना है कितना प्रकार शादी होता है। ये शादी बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक सही ढंग से शादी विवाह नहीं होता है तब आगे जाके फिर प्रॉब्लम आता है, लेकिन मेन पॉइंट है शादी। जब तक बीज सही से नहीं बोएगा तो फल कहां से अच्छा बनेगा, कहां से उसको सुरक्षा, उसको देखभाल करेगा तब फिर पेड़ का फल सही आएगा। उसी प्रकार शादी, कितना भक्त लोग को जानते हैं शादी कितना प्रकार की? हाँ जी, देखिए ब्रह्मचारी को मालूम है आठ प्रकार की शादी है, लेकिन जो भी है, लेकिन आठ प्रकार शादी है, शादी है ये स्मृति शास्त्र में बता गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग भक्त बोलते हैं द्विजराज के प्रभु का क्लास में थोड़ा सा नया नया कुछ चीज, एक दो चार पॉइंट तो नया निकालना पड़ता है कोई ना कोई शास्त्र से। तो इस प्रकार आठ प्रकार शादी होता है। पहले शादी का नाम है ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह है दैव विवाह, इसका मेंशन करूंगा एक ही करके, पहले पॉइंट कर लेता हूं आठ प्रकार कैसा होता है। पहले है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आपस विवाह, चौथा है प्राजपत्य विवाह, पांच है गंधर्व विवाह, छठा है असुर विवाह, सातवां है राक्षस विवाह, आठ है पिशाच विवाह, मतलब पिशाची। ये आठ प्रकार के विवाह से अभी रह गया, पांच प्रकार के विवाह अभी चल रहा है, लेकिन तीन प्रकार के विवाह उसका साथ जड़ित हो चुका है। एक एक समझिए, पहला विवाह का नाम है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह किसको कहते हैं? सात पुरुष को चाहिए कि वे पहले वर को, वर के स्वभाव, आचरण, विद्या, कुल कुल मर्यादा और कार्य की जांच करें, फिर यदि वह सभी दृष्टि से सुयोग्य पति हो तो उससे कन्या प्रदान करें। इस प्रकार योग्य वर को बुला के उसका साथ कन्या का विवाह करना उत्तम विवाह माना जाता है। इसको कहते हैं ब्राह्म विवाह, मतलब ब्राह्मण के धर्म का अनुसार इसको कहते हैं ब्राह्म विवाह। दूसरा प्राजापत्य विवाह, ये दो विवाह को एक ही साथ है, खात्र विवाह और प्राजापत्य विवाह दोनों जड़ित है, दोनों एक ही साथ, एक ही उनका अलंकार है। कैसा? जो देहज आदि के द्वारा वर को अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है यह श्रेष्ठ क्षत्रियों का सनातन धर्म है, इसको कहते हैं क्षत्र विवाह व प्राजापत्य विवाह। तीसरा अपने माता पिता के पसंद किए हुए वर को छोड़कर कन्या जिसको पसंद करती हो तथा जो कन्या को चाहता हो ऐसा वर के साथ कन्या का विवाह करना वेद वेताओं का द्वारा गंधर्व विवाह कहा जाता है। ऊपर दो विवाह तो होता नहीं, होता है? अभी का समय कट चुका है, अभी सिर्फ ये विवाह चल रहा है। कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह। बस उठा लो, बस चला, नहीं तो फेसबुक में बैठ के सामना सामने हो जाओ, नहीं तो व्हाट्सएप में सामना सामने हो जाओ, बस हो गया। पहले समय में ऐसा नहीं होता था, पिताजी जो देखा पिता माता का जो चॉइस हो गया उसका अनुसार होता था। तो पिता माता नहीं चाहते बच्चा को गढ़ा में गिराने के लिए, पिताजी का ये कर्तव्य नहीं होता है। पिताजी सही ढंग से देखता है, पिताजी का दृष्टि बहुत उच्चतर दृष्टि होता है, पिता माता का दृष्टि संपूर्ण उच्चतर दृष्टि होता है। हमें पिता माता का दृष्टि के साथ हमारा दृष्टि का तुलना नहीं कर सकते है, और पिता माता का संपूर्ण रियलाइजेशन रहता है और सब कुछ देख के वो बच्चा के लिए सही ढंग से करते हैं। लेकिन अभी का समय संपूर्ण अलग हो चुका है, ये संपूर्ण पाश्चात्य सभ्यता हमारा देश में फैल रहा है, पाश्चात्य देश का ये सबको मालूम है। लेकिन ये पहले समय नहीं था, जिस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं, पहले समय में टीवी नहीं था, ज्यादा से ज्यादा कितना साल हुआ टीवी आया, कि मोबाइल ज्यादा से ज्यादा कितना साल हुआ, कि जो लैपटॉप की इंटरनेट की जो भी है ये कितना साल हुआ आया, ज्यादा से ज्यादा 50 साल का पहले चला जाओ, 50 साल का पहले, 50 साल का पहले भी ये नहीं होगा। इसलिए कहते हैं 50 साल आया, इसलिए कह रहा हूं भगवान कृष्णा ये धरती पे आए थे, ये धरती पे कितना साल हो गया था, 5000 साल। भगवान कृष्णा जब चैतन्य महाप्रभु आए 5 साल, लेकिन प्रभुपाद ये संस्था का प्रतिष्ठा किया 50 साल, 5500 और कितना 50। शिलो प्रभुपाद की 50 साल का पहले का तरफ चला जाओ, इसलिए कहते हैं संस्था जब बना हुआ था, संस्था प्रतिष्ठा जब हुआ था उसका पहले चला जाइए। वो टाइम पे कोई भी ये नहीं था, ना इंटरनेट, ना टीवी, ना मोबाइल, तो सही ढंग से बस। लेकिन प्रभुपाद इतना दिव्य दृष्टि प्रभुपाद का था, और प्रभुपाद ये भागवत में इतना चीज को मेंशन किए, आगे जाकर ये होगा सारा चीज भावार्थ में, ऐसा ऐसा चीज। पहले तो प्रभुपाद एक ही सेंटेंस में, ये श्लोक का एक ही सेंटेंस में इसका अर्थ को व्याख्या कर दिया, एक ही सेंटेंस से। क्या पहले लिखा है? जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो वह अनेक पाप कर्म करता है। विष्णु भक्ति रहित होने का नाते पाप करेगा ही करेगा। प्रभुपाद ये श्लोक का संपूर्ण तात्पर्य एक ही सेंटेंस है, एक ही लाइन में सब दे दिया। और जगत में प्रत्येक व्यक्ति वही कर रहा है, विष्णु भक्ति की, भगवान को छोड़ा, भगवान को छोड़ने के नाते पाप में जीवन बिता रहे और कर भी रहा है। तब अभी का जो विवाह चल रहा है ये गांधर्व विवाह कहा जाता है। तब चौथा नंबर विवाह को कहते हैं कन्या के बंधु बांधव को लो में डाल के बहुत साधन दे के, बहुत सा धन देकर जो कन्या को खरीद लिया जाता है, इससे मनीषी पुरुष असुर का धर्म व असुर विवाह कहा जाता है। और पांच नंबर विवाह है कन्या के अभिभावक को मारकर उनको पिता माता को मार देगा, उनके संतान को उनका मस्तक को काट देगा, काटकर रोती हुई कन्या को घर से जबरदस्ती पकड़कर लाना राक्षसों के काम है। इसको राक्षस विवाह कहा जाता है और नहीं तो पिशाच का विवाह कहा जाता है। आठ प्रकार विवाह से अभी पांच प्रकार विवाह रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा विवाह कौन सा विवाह हो रहा है? गांधर्व विवाह। तो वो कैसा होगा? बहुत सारा चीज है नारी का विषय में, मतलब माताओं लोग के लिए कहने के लिए कहते हैं नारी का विषय में। कभी ऐसा समय था कन्या को स्वयंवर करना पड़ता था, होता था वो राजा राजू का टाइम पे स्वयंवर होता था, लेकिन शास्त्र में कहा गया अभी का टाइम पे स्वयंवर नहीं करना है। और जितना स्वयंवर करके पति को चुना है और वो इतने वो दुख झेले है, एक एक के नाम देखिए शास्त्र में मानते हैं, सीता पति को चुना है वो स्वयंवर था, द्रौपदी ने, और तीसरा है दमयंती। किंतु पिता माता सबका हिताकांक्षी बंधु होते हैं, इसलिए पिता माता जिसको देखते हैं उसी हिसाब से विवाह करना चाहिए। कन्या विवाह न करके साधन भजन करके जीवन बिता सकता है, लेकिन शास्त्र का निर्देश नहीं है। तब शास्त्र का निर्देश नहीं है तब हमें शास्त्र का विरोध में जाते हैं। बहुत सारे माताओं लोग बोलते हैं हम भी मीराबाई बन जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है। मीराबाई कौन सा लेवल और हम कौन सा लेवल, कौन सा स्थिति, वो देखना है। बहुत सारे लोग के मन में कोई चिंताधारा होता है, ये नहीं। समय स्थान पात्र वो देख के चलना चाहिए। अब मीराबाई कौन सा स्थिति का था वो स्थिति देखो पहले, अभी का समय देखिए और कौन सा स्थिति। हमेशा भगवान का भजन में रत होता है। अभी तो हमारा मन कहां कहां दो सेकंड में इधर उधर भटक जाता है, तो वो कैसा? इसको बहुत एक ही शास्त्र में इसको चीज में बहुत गहरे बात बताए। प्रकृत पक्ष में त्याग और वैराग्य केवल साधु वेश में ही संभव है। ऐसा नहीं जिसका हृदय में पदार्थ का प्रति दासत्व तो नहीं है वो गृह में रहकर भी सन्यासी बन सकता है। माताओं लोगों का अंदर कोई सन्यासी नहीं बनना चाहिए, ये शास्त्र की विधि नहीं है। माताओं लोग को कभी सन्यासी नहीं है, उनके लिए विरोध है सन्यासी नहीं। बहुत सारे माताओं लोग अभी आप देख रहे हैं बहुत सारा जगह पे सन्यासी बन चुके हैं और ये वस्त्र धारण कर चुके हैं, वो विरोध है, गलत दिया गया, इस शास्त्र में विरोध है, ये नहीं है। और माताओं का कर्तव्य है कैसा रहने के लिए, कहते हैं बच्चा है किसका अंडर में रहना चाहिए? बच्चा है तो पिता माता का अंडर में। और जब बड़ा हो जाता है शादी करता है, शादी करने के बाद पति का अंडर में। और जब वृद्ध हो जाता है वो टाइम पे किसका अंडर पे? इसलिए कहते हैं पित्या रक्षति कुमारे, भर्ता रक्षति जौवने, पुत्रास्त स्थावरे भावे, न स्त्री स्वतंत्र महर्ती। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए, उसका स्वतंत्र देने से वो व्यभिचारी बन सकता है। जैसा वो किसका अंडर में रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? जिसी प्रकार तैयार की हुई रसोई, रसोई पर दृष्टि न रखने से वह कुए और कुत्ता के अधिकार हो जाता है और कुए और कुत्ते इसका ऊपर अधिकार जमा लेते हैं, इस प्रकार माताओं को किसी का शरण में रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं पिता रक्षति कुमारे, भर्ता रक्षति जौवना, पुत्रास्ते स्थावर भावे, न स्त्री स्वतंत्र महर्ति। और दूसरा अर्थ में कहते हैं पतिव्रता, साध्वी और सती, ये तीन अलग अलग है ना एक ही है? मैं इसको पिछले क्लास में बोल चुका हूं लेकिन इसको फिर आपको रिपीट करने के लिए पूछ रहा हूं। पतिव्रता, साध्वी और सती, किसको कहते हैं? और तीनों का अर्थ एक ही है, आपको समझते तीनों का अर्थ एक ही है कि अलग अलग है? ऐसा हिसाब से देखेंगे, शब्द अर्थ से दृष्टि से देखेंगे तो तीनों का अर्थ समान है, शब्द दृष्टि से देखेंगे तो तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इसका भाव में थोड़ा सा अंतर है, भाव में थोड़ी सा अंतर है। किस प्रकार? एक एक करके आप समझिए। पतिव्रता किसको कहते हैं? पति जीवित रहना समय पर जो स्त्री पति का दृढ़ नियम को पालन करती है उसको पतिव्रता स्त्री कहा जाता है। दृढ़ता का साथ, जब पति जीवित रहता है दृढ़ता का साथ पति का नियम को फॉलो करता है, पति जो कहता है, इसलिए कहते हैं पति जो खाता नहीं पत्नी को उसको नहीं खाना चाहिए। आएगा पतिव्रता का नारी का ऊपर तो 100 पॉइंट है, एक ही नहीं दो नहीं 100 पॉइंट। मैं तो अभी नोट किया लेकिन इतना बोल सकता नहीं, लेकिन 100 पॉइंट है, 100। आप चाहते हैं सुनने के लिए तो फिर बोलते रहूंगा चाहते हो सुनने के लिए तो फिर बोलते रहूंगा, बहुत सारा चीज है। 100 पॉइंट है पतिव्रता नारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। कहते हैं पति को कभी भी नहीं, पत्नी को कभी भी पति का सामने बैठ के आंख को आंख मिलाकर कभी बात नहीं करना चाहिए। अभी ऐसा हम बात करते पूरा आंख आंख मिल जाता है तो फिर आंख हमारा लाल हो जाता है, पत्नी का आंख ज्यादा लाल हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। हो सरा है तब पतिव्रता का नारी का कर्तव्य होता है पति का दृढ़ नियम को पालन करना चाहिए, इसको पतिव्रता नारी कहा जाता है। पति जो व्रत लेता है, देखिए जब विभीषण ने जो ने माला दिया था, विभीषण ने लेके भगवान राम को माला दिया था, जो रावण ने सब हीरा को रखता था पास में, तब विभीषण ने उसको माला बनाया, माला बना के किसको दिया? हाँ विभीषण लेके, विभीषण इसको माला बना के रखते थे और विभीषण रखने के बाद सोचता था इसको किसको पहनाने से अच्छा लगेगा, भगवान राम को पहनाने से अच्छा लगेगा, ये रावण के लिए अच्छा नहीं लगेगा तब राम को पहनाना अच्छा लगेगा। तब जब राज्य अभिषेक हो रहा था तब उसी टाइम पे विभीषण गया और ये माला लेकर गए, डायमंड का माला है हीरा, और उसको लेकर दिए। तब भगवान राम का गला में धारण करने का बाद है, भगवान राम और पहना नहीं, साथ में कौन बैठी थी? जानकी, जानकी को पहले दे दिए और देने का नाते, और माता सीता भी इमीडिएटली उतार दिए, पहना नहीं। क्यों नहीं पहने? बोले मेरा पतिदेव नहीं पहना, मैं कैसे पहनूं। इमीडिएटली उतार के किसका गला पे दिया? पास में और कौन बैठे थे? हनुमान सेवक राम, हनुमान बैठे थे, तब उनका गला पे दे दिए। यहां पे क्यों मैं कह रहा हूं पतिव्रत का कर्तव्य, पति नहीं पहन रहा है मैं कैसा पहनू। तब हनुमान जी को देने का बाद फिर क्या हुआ, हनुमान जी इसको पहन लिया और पहन के देख रहा है, बोले मेरे प्रभु नहीं पहना, प्रभु का धर्म पत्नी सधर्मिणी पत्नी माता सीता वो नहीं पहना। तो वह इसको पहन के देख रहा है और चुबा रहा है। तब जितने सब सभागृह में थे सारा सभागृह का लोग बोलने लगे, बोले बांदर को की मालूम है, बांदर की जानता है हीरा का कीमत कितना है। और हनुमान जी को सुनाई दिया, हनुमान जी कहने लगा मैं जात में बांदर हूं ज्ञान में बांदर नहीं हूं, जात में ब्राह्मण हूं ज्ञान में बांदर नहीं हूं। बोले ऐसा कैसा? तो इसका कीमत आपको मालूम नहीं, आपको दांत में टुकड़ा कर रहा है। हनुमान जी कहने लगा जिसमें राम है इसको रखता हूं, जो राम जिसमें राम नहीं इसको फेंकता हूं। और सभागृह में जितना लोग सब बैठे थे बोले ये शरीर क्यों रखा है, ये शरीर क्यों रखा है, ये शरीर को भी फेंक दो। और हनुमान जी कहने लगा ये शरीर के अंदर भी प्रभु राम है। और हनुमान जी का बात को सत्य करने के लिए और जितने सभागृह में लोग बैठे थे सब लोग बोले, बोले दिखाओ आपका शरीर में कहां पे भगवान है। तब हनुमान जी क्या करने लगे, छाती को जब फड़े तब क्या दर्शन हुआ, राम और सीता। कहने का अर्थ है। और यही वचन भक्त का, ये वचन था, ये वचन को सत्य करने के लिए भगवान हृदय में सबको दर्शन दिए, क्योंकि सारा संसार का लोग मोह माया में फंसे होते हैं ना, और उनको कहां भगवान दर्शन होगा। और हनुमान जी हर जगह पे भगवान दर्शन करे और बोल रहे हैं मेरा हृदय में भी भगवान है। तो वह पतिव्रता नारी का क्या कर्तव्य, यहाँ पे यही संबोधन करते हैं। तब जानकी भी यो माला नहीं पहने और हनुमान जी की दे दिया, और उन्होंने भगवान राम नहीं पहने इसलिए अपना खुद नहीं पहने। ये पतिव्रत का नारी का कर्तव्य होता है, दृढ़ता का साथ है, दृढ़ नियम पालन। दूसरा है पति का मृत्यु का होने पर भी जो नीति नियम को त्याग नहीं करती उसको साध्वी कहा जाता है। पति ये धरती छोड़कर चले गए लेकिन पत्नी को क्या करना चाहिए, पति का नियम को फॉलो करना चाहिए लास्ट तक, अपना शरीर छूटने तक वही नियम, एक ही कदम भी आगे नहीं बढ़ाने का। पति का जो नियम है इसको फॉलो करना चाहिए, एक ही कदम भी, एक ही शब्द भी, जो भी वचन दिया जिस प्रकार भाव में थे दोनों साथ साथ में, वही वचन को शेष समय तक लेवाना चाहिए, इसको साध्वी स्त्री कहा जाता है। तब लास्ट में कहा गया सती, जो सत्य का पालन करती है और जिसका पति का सह दृढ़ संबंध है, और पति मृत्यु का समय समय में उसी अग्नि में चला जाती है, उसको सती कहते हैं। इसीलिए पतिव्रता, साध्वी और क्या है, सती। और पतिव्रता स्त्री को कैसा पहचानोगे, कुछ सेंट पेंट लगा देने से, कोई लिपस्टिक लगा देने से ऐसा पतिव्रता हो सकता है, इसको ऐसा पहचानने पहचानने का कुछ तो होगा। कोई गुरु को कैसा पहचानोगे, शिष्य को, गुरु शिष्य को कैसा पहचानेगा, सब कुछ है। इसी प्रकार पतिव्रता स्त्री को कैसा पहचानोगे, उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा ना, कुछ का कुछ ना कुछ गुण होगा, तब समझ जाएगा ये पतिव्रता है। कैसा पतिव्रता स्त्री, गृह में सर्वदा शांति विराजमान होता है। पतिव्रता जिस घर में पतिव्रता नारी रहता है उसका घर में सुख और शांति विराजमान है। सुख शांति मतलब भगवान विराजमान है, और भगवान जहां पे विराजमान है वहां पे लक्ष्मी विराजमान है, और लक्ष्मी जहां पे विराजमान है लक्ष्मी के साथ नारायण विराजमान रहेंगे तो वहां पे शांति रहेगा, शांति और कहां नहीं जाएगा। सारा संसार का लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, सही, सारा संसार का लोग किसके पीछे भाग रहे, लक्ष्मी का पीछे भाग रहे, लेकिन लक्ष्मी कहां पे है, नारायण का चरण पे, कृष्ण का चरण पे, और वो कहां किसके पीछे भाग रहे, लक्ष्मी और किसके पीछे भाग रहे, हमें लक्ष्मी के पीछे भाग रहे, कहां मिलेगा कहां मिलेगा लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी नारायण का चरण पे, इसलिए हमें नारायण को पकड़ना है, मतलब भगवान कृष्ण को पकड़ना है। जब कृष्ण को पकड़ेंगे तब, इसलिए कहते हैं पतिव्रता नारी का कर्तव्य है पति देवता का रूप में सेवा करें, तब उसी घर पे शांति जरूर रहेगा। घर पर सब लोग अपना अपना धर्म पालन करते रहेंगे, अपना अपना धर्म पालन करते रहेंगे, अपना धर्म से विचुत नहीं जाएंगे। इसका ऊपर एक ही श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, जिस प्रकार कहते हैं गृहस्थ आश्रम में कैसा, घर गृहस्थ में कैसा रहना चाहिए, परिवार एक ही शिवजी का परिवार बन जाना चाहिए। शिवजी का परिवार में कभी कलह नहीं होता है, कभी झगड़ा नहीं। आप देखिए ये श्लोक में आप समझ सकते हैं, रुद्र मुंड धर भुजंग सहित गौरी तु सदभूषणा स्कंद शंभु सुत षडानन जूत संडी च लंबोदर सिंह केड़ीम मूषकम च वृष भस्ते साम निज वाहन मिथम शंभु गृहे विभिन्न मतिषु चक्य सदा वर्तते है। इसका अर्थ क्या है, भगवान शंकर जटा पर किसको धारण करते हैं, सर्प धारण किए हैं, और पार्वती सुंदर सुंदर आभूषण में सुशोभित है, और शंकर का पुत्र कौन है, कार्तिक है, छह मुख माल है, और गणेश का मुख कैसा है, गजानन है ना, गणेश का दूसरा नाम है गजानन ना, हाँ, लंबा सूंड है और पेट बहुत बड़ा है, लेकिन ये सबका वाहन कैसा है? सबका वाहन अलग अलग है। वृष का वाहन कौन है? वृष का नहीं, वृष का उल्टा में बोल रहा हूं, शंकर का वाहन कौन है? वृष है। और पार्वती का वाहन सिंह है, शेर है ना, सिंह बोलते हैं। तब कार्तिक का वाहन मयूर, और गणेश का वाहन एक ही दूसरा को खाने वाले है, एक ही दूसरा का शत्रु है, दुश्मन है, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता है। एक ही दूसरे का भक्त के फर भी सर्वदा एकत्र रहते है। अतएव परिवार में ऐसा स्वभाव युक्त व्यक्ति रहकर भी अपना अभिमान और सुख भोग को त्याग करके अन्य का हित के लिए और सुख का प्रति दृष्टि रखकर परस्पर प्रेम पूर्वक एकत्र अवस्थान करे। कोई किसी का कुछ भी स्वभाव हो जाए, कैसा भी स्वभाव हो जाए, लेकिन ऐसा रहना चाहिए। तो प्रतिव्रता नारी का ऐसा क्वालिटी है। अपना अपना धर्म को पालन करते हैं परिवार में जितने भी, और संतान लोग माता पिता के भक्ति करते हैं, माता पिता का भक्ति जितने भी संतान होते हैं। पहले इसलिए कहते हैं, पहले समय पे बच्चा, छोटे बच्चे सुबह उठ के पहले पिता माता का चरण स्पर्श करता था और प्रणाम करता था, पहले प्रणाम करता था और प्रणाम करके प्रभु राम का नाम लेता था, प्रभु कृष्ण का नाम लेता था। अभी नहीं है, अभी है ऐसा शब्द? ऐसा शब्द सुनने का नहीं मिल रहा है, करने का दूर की बात है। पहले समय में ऐसा था, और पिता माता का आदेश को पूरा नीति नियम का साथ पालन करता था, पिता माता का इस प्रकार की भक्ति। और पड़ोसी लोग, पड़ोसी लोग हर जगह पर उसी परिवार का बात आलोचना करते हैं। वो परिवार सही ढंग से पतिव्रता स्त्री रह के घर को अच्छा चलाती है, तब इनका इसी घर का बारे में दूसरा जगह पे भी चर्चा होता। एक व्याद अजगर सांप को मुख में दमयंत को रक्षा करने से उनका रूप देखकर मुग्ध हो गया था। इनका मन में दुर्भावना सृष्टि हुआ, इसलिए दमयंती का अभिशाप से वो वह ऐसा हो गया था। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, फिर भी दुष्ट दुर्योधन का ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अलग अलग प्रमाण है अलग अलग शास्त्र का अनुसार, लेकिन इतने तो आप जब कृष्ण भक्त बन चुके हैं, लेकिन मेन शास्त्र में अनुसार श्रील प्रभुपाद यहां पे पॉइंट देते हैं, जो विष्णु भक्ति से रहित होता है वो व्यक्ति पाप कर्म करता है। और पाप कर्म किसको कहा गया? कौली युग में चार जगह पे पाप कर्म है। यहां पे जब पत्नी को छोड़ के एकला निकल गए पुरंजन निकल के क्या किया? पहले हिंसा करने लगे, पशु हत्या करने लगा, ये मेन पॉइंट पाप है। इसलिए जीव प्रति और दया नहीं रहा, और जीव प्रति दया नहीं रहता और पत्नी का प्रति क्या दया रहेगा? इसलिए कहते हैं चार जगह पे पाप का खंबा, चार पाप का खंबा है कलयुग में। और ये पाप करते कौन? जो कृष्ण भक्ति से रहते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान का सेवा में नहीं रहते हैं। भक्ति का ये बाधक है, भक्ति में बाधक के मतलब भक्ति का बीज को उगा नहीं देता है और रोक देता है। चार चीज में नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार पशु हत्या करेंगे तो क्या नष्ट हो जाएगा? दया नष्ट हो जाता है, दया नहीं रहे। पशु हत्या करेंगे तो दया नष्ट होता है। जैसे कहते हैं ना, चार खंबा है, सत्य, दया, तप और क्या है? शौच। चार खंबा है ये सत्य को, भगवान को प्राप्ति करने के लिए चार खंबा है, और पाप का चार खंबा है। हाँ, इसीलिए कहा गया पशु हत्या करेंगे तो क्या नष्ट हो गया? दया। और नशा करेंगे तो क्या होगा? तपस्या नष्ट हो जाता है। परस्त्री गमन करेंगे तो क्या होगा? शुद्धता, शौचता नष्ट। और जुआ करेंगे तो सत्य नष्ट हो गया। एक के साथ एक ही रिलेशन देखिए, ये करेंगे तो ये नष्ट होता है, ये करेंगे तो वो नष्ट होता है। ये पाप का खंभा है, ये पुण्य का खंभा है, इसलिए हमें समझना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को साथ दो बैंक अटैचमेंट, पाप का बैंक, पुण्य का बैंक। आप जो करते हो वो बैंक में चला जाता है, ऑटोमेटिक चला जाता है। ऐसा नहीं कि बैंक में जाना पड़ेगा, संसार में सांसारिक जगत का बैंक में जाना पड़ता है। फिर भी अभी अभी ऐसा हो चुका है, अभी नहीं जाना पड़ता है, सब क्या हो चुका है, इंटरनेट में घर पे बैठ के सब आ जाता है, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो पाप का बैंक और पुण्य का बैंक है, ये दो बैंक में आप जो कर्म करते हैं कर्म का अनुसार वो चला जाता है, उसी प्रकार चला जाता है। और एक दिन वो खोलता है तो खाता, फिर खोल के देखा जाता है कितना पाप किया कितना पुण्य किया। एक दिन सिर्फ, 10-20 दिन नहीं लगता है। कभी हम लोग एग्जाम देते हैं, स्कूल जाते हैं, क्लास करते हैं, क्लास में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद एग्जाम के लिए हम जैसा अभी डिसाइपल कोर्स किया, खाता दिए तो अभी 15 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, एक महीना का बाद। लेकिन हमारा जो रिजल्ट है, एक दिन का वो रिजल्ट एक दिन में पूरा खाता का फाइल खोल के दिखा देंगे क्या रिजल्ट है इसका। रिजल्ट के अनुसार उसको जगह को, उसी जगह को भेजा जाएगा। और ऐसा शरीर देके, कौन सा शरीर मिलेगा, इसके अंदर क्या ज्ञान रहेगा, कितना बुद्धि रहेगा, और कौन सा जगत में जाएगा, उसी हिसाब से उसको भेजा जाता है। इसीलिए हम ये समझ जाना चाहिए किस प्रकार हम कर्म करें। और आपको 2 मिनट और टाइम है, टाइम के अनुसार मैं 2-3 पॉइंट आपको बता दे रहा हूं, जो क्या है पतिव्रता नारी का किस प्रकार क्या कर्तव्य। एक ही है, स्त्री को कभी भी किसी प्रकार की अपने स्वामी के साथ अनुचित वार्ता नहीं करें। और पति कुरूप हो बा दुराचारी हो का स्वभाव हो जाए, बुरे स्वभाव का, रोगी, पिशाच, क्रोध, बूढ़ा, चालाक, अंध, बहरा, भयंकर स्वभाव का, दरिद्र, कंजूस, घृणित, कायर, धूर्त अथवा परस्त्री लंपट ही क्यों नहीं हो, सती साधु की स्त्री के लिए वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा देवता का भांति पूजनीय है, इसको देवता रूप में पूजा करना चाहिए। स्त्री बालिका हो या युवती अथवा वृद्ध ही क्यों नहीं हो, उसे अपने घर पर ही कोई काम स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। जब तक पति का आदेश नहीं होता है अपना मनमानी में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी का माता लोग बोले कैसा करेंगे, बाय चांस एग्जाम्पल हो, बहुत सारे लोग प्रश्न भी इस प्रकार की पूछ लेते हैं, बोलते हैं देखिए पति बाय चांस दूसरा देश में है, तब घर पे कुछ सामान मतलब ग्रोसरी नहीं है, तब क्या करूं, और पास में भी पैसा भी नहीं है, तब क्या करूं, कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, उसका क्या उत्तर दे सकते हैं। और अभी का समय का अनुसार उसको फोन भी कर सकते हैं, दूर देश में है तो पूछताछ कर सकते हैं, ये स्वधर्मणी का पतिव्रता नारी का ये कर्तव्य है, कम से कम तो फोन करके पूछे, डेली है, कर्तव्य है, पूछना चाहिए। हमें डेली इधर उधर बात करते हैं और पति को पूछ के काम को आगे बढ़ाना चाहिए, और बात करके पूछ के पूछताछ करके, हाँ ऐसा नहीं है, वो फिर बता सकते हैं आपके पास पैसा नहीं, फिर भी पैसा नहीं तो बैंक में पैसा पड़ा है, फिर भी आपके पास एटीएम नहीं है तो क्या करें, वो फिर बता सकते हैं, हाँ उनसे थोड़ा उधार ले लेने का, वो सब कुछ सलाह देके उसी हिसाब से घर गृहस्थ को चलाना चाहिए। अब बिना पति से पूछ के एक ही कदम भी चौकट का बाहर निकले तब वो पतिव्रता नारी में नहीं जाएगा। लेकिन अभी का समय में तो पत्नी कहाँ है और पति कहाँ है, बिना फोन, बिना ईमेल, बिना बताए, बिना पूछे, बस कहाँ कहाँ घूमते हैं, तो क्या रहेगा। इसलिए अभी का समय पे आदर्श गृहस्थ जीवन बिताना इतना आसान नहीं है, फिर भी आसानी है जो कृष्ण भक्त बन जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे विदेश में ये आदर्श गृहस्थ जीवन नहीं हो सकता है, मैं ये संस्था बनाया आदर्श गृहस्थ बनाकर दिखाऊंगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद का मिशन में ये संस्कार दिया जाता है। और श्रील प्रभुपाद कहते थे संसार में ब्राह्मण नहीं है क्योंकि कलि युग में सब शूद्र है, मैं ब्राह्मण बना के दिखाऊंगा, और सबको ब्राह्मण बना रहा है। जात में ब्राह्मण नहीं बनते हैं, कर्म से ही गुण कर्म के अनुसार ब्राह्मण बनाते हैं। शिला प्रभुपाद इस प्रकार कहते हैं। बहुत सारा पॉइंट है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बता देता हूं ये कौन सा किताब में है, पद्म पुराण में है, ये नारी का कर्तव्य 100 पॉइंट है, बहुत सारा चीज है, थोड़ा गहरे का 2 पेज है, इसको आप पढ़ोगे तो ध्यान पूर्वक समझ पाएंगे। इसीलिए और 5 माता थे, जो 5 माताओं का नाम सुबह सुबह लेना चाहिए, बता सकते कौन? सबको मालूम है ये करना चाहिए सुबह का समय, और घर गृहस्थी का समय पे सुबह उठ के हर व्यक्ति हाथ को देख के एक मंत्र बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, ये कर को दर्शन करना चाहिए, हाथ को दर्शन करना चाहिए। और जो 5 सती है, अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचक नाम स्मरत नित्यम महापातक नाशनम, महापातक नाश हो जाता है ये 5 का नाम लेने मात्र से। ये कितने सती नारे, फिर भी आपका मन में बहुत सारा भी प्रश्न आएगा, बाई चांस पति इस प्रकार होगा तो क्या करना चाहिए, वो भी चैतन्य चरितामृत में भी है, मैं सब बोल दे रहा हूँ, समय हो चुका है अभी हम बोल नहीं सकते, लेकिन पति इस प्रकार होगा तो क्या करना चाहिए, ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी है, मध्य लीला 15 अध्याय श्लोक नंबर 264 श्लोक है, उसके अध्याय को पूरा पढ़ने से आपको क्लियर मालूम होगा, सिर्फ पॉइंट एक ही श्लोक बोला ऐसा नहीं है, उसका पूरा अध्याय का पूरा कम से कम आगे पीछे, क्योंकि श्लोक का पॉइंट का साथ है अलग अलग रहा, एक श्लोक को आप कोई प्रवचन देना चाहता है श्लोक का पहले 2 श्लोक की 3 श्लोक और आगे 1-2 श्लोक पढ़ने से इसका साथ कंबाइन करके आप कुछ क्लास बोल सकते हैं, इस प्रकार इसका साथ संबंध रहता है, इसलिए हमको यह जानकारी होना चाहिए। ठीक है, यहीं पे हम लोग कथा को विराम देते हैं, कुछ त्रुटि रहा तो आप लोगों को क्षमा करने का, कुछ ना कुछ गलती तो मुख से निकल जाता है, फिर भी बोलने के लिए प्रयास तो कर रहा हूं, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए ऐसा बोलने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, शिष्य वृंदावन धाम की, संवेद गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु भेवच पतिता पावन भो वैष्णव भो नमो नमः हरे कृष्णा।